ओम शांति। लौकिक में सोना बहन जी चंडीगढ़ से हैं, वहीं पर ही आपको 1987 में बाबा ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर आपने 94 से 2008 तक ऑस्ट्रेलिया में बाबा की समर्पित रूप से सेवाएं की और 2008 से अभी आप आबू धाबी में बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। तो विदेशों में रह करके बाबा की सेवाएं करना, आत्माएं दूसरे धर्म की होते हुए, भिन्न संस्कार होते हुए, क्योंकि विदेशी भाई बहने बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत तर्क करने वाले भी होते हैं, प्रश्न पूछने वाले होते हैं, केवल सुनने वाले नहीं होते, प्रैक्टिकल लाइफ देखने वाले होते हैं, तभी वो उस चीज को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे भिन्न संस्कृति, भिन्न माहौल में, मुस्लिम कंट्रीज में आप किस तरह से बाबा की सेवाएं करते हैं, उन सेवाओं को बढ़ाते हैं, कैसे अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति से, उन श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उनको कन्विंस करते हैं, और कितनी आप मधुर वाणी से, कितना नम्रचित होकर के वहां पर उनकी सेवाएं करते हैं। तो ये तो विदेशी सेवाओं का, सोना बहन जी का बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन विदेशों में सेवाओं को करते हुए कुछ गवर्नमेंट्स की तरफ से, कुछ अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से बहुत सारे पेपर्स भी आते हैं जिनको हम समस्याएं कहते हैं, तो उन समस्याओं को भी कैसे आप हैंडल कर करके चिंता मुक्त रहते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पर सोना बहन जी सुनेंगे कि हम भी अपने जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं आती है, तो उन समस्याओं को सामना करते हुए कैसे चिंता मुक्त रह सकते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हर एक के ऊपर हैं, तो उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए कैसे हम चिंता मुक्त रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सर्व जिम्मेवारियां संभालते हुए सर्व समस्याओं से, सर्व चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, तो अब हम यही सुनते हैं आदरणीय सोना बहन जी से। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा लौकिक जन्म बॉम्बे में हुआ था और मेरी मदर के साइड का पूरा परिवार बॉम्बे से है, खास करके जो खार सेंटर से कनेक्शन, तो ये भी एक कहेंगे सडन है ना, अनएक्सपेक्टेड ड्रामा का सीन है जिसमें मैं आपके साथ आपके सामने बैठी हूँ। तो आज का विषय बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो है जिम्मेवारियों का। कोई नहीं कह सकता है कि मुझे करने को कुछ नहीं है। है कोई यहाँ जो बोले कुछ भी नहीं है करने को? सवेरे उठते हैं, शाम को सोते हैं, बीच में कुछ भी नहीं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो फिर बहुत ही मैं कहूंगी लकी होंगे, या शायद लकी नहीं भी है, क्योंकि जिम्मेवारियां संभालना, कार्य में आना बहुत सुंदर चीज है। नहीं, चाहे घर की जिम्मेवारी हो, चाहे अपनी बिजनेस की जिम्मेवारी हो, जॉब में जिम्मेवारी होती है, सोशल गैदरिंग्स में जिम्मेवारियां होती हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ना। तो एक्चुअली अगर सिर्फ जिम्मेवारियां का कार्य देखा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भोजन बनाना है बच्चों के लिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चों को उठा के उनको टिफिन बॉक्स बनाना है, नॉट अ प्रॉब्लम। किसी को ऑफिस जाना है, ये काम करने हैं, ओके इजी। तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर? चिंता कहाँ? सिर्फ कार्य करना होता अकेले में तो ये बहुत आसानी से हो जाता, पर जो हमारे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सीन्स आते हैं और व्यक्ति आते हैं और परिस्थितियां ऐसे आ जाती है जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे हो सकता है. उनको संभालना, उनको मैनेज करना, खास करके जब अनएक्सपेक्टेड अचानक कुछ हो जाता है तब. सो इसमें भी सोचने की बात है कि फॉर एग्जाम्पल हमने दिन अपना दिन ऐसे प्लान किया है और दिन के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाती है, ठीक है, उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर थोड़ी चिंता भी आती है कि टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो गया तो आगे कैसे मैनेज करेंगे, है ना. आगे चलते जाओ तो फिर कोई सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है तो और ही ऊपर नीचे हो जाता है, अंदर फ्लक्चुएशन हो जाती है. सो एक्चुअली जिम्मेवारी का प्रॉब्लम इतना नहीं होता है जितना सेल्फ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है. अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर औरों का, इनको मैनेज करना और साथ साथ में ही अपनी जिम्मेवारियां संभालना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है. और मैं कहूंगी कि हमारे अंदर जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है हर एक का अलग अलग है. क्यों? क्योंकि जिस चीज से आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा उस चीज को मुझे तो बहुत इजी लगेगा. जिस चीज से मुझे तकलीफ होगी आप कहेंगे अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी सी चीज है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो गुस्सा करता है तो आप अपना जिम्मेवारी संभाल रहे हो, आप अपना डेली रूटीन कर रहे हैं और वो व्यक्ति आ जाते हैं तो वो सब कुछ थोड़ा अपसेट कर लेते हैं, राइट. तो आपका इफेक्ट हो जाता है, अंदर फील होता है. आपका आपके बाजू में जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं आपके साथ, आपके कॉलीग्स, वो कहेंगे हमको तो कुछ नहीं होता है, इनसे इग्नोर कर लो, कुछ नहीं होता है. आप कहोगे इग्नोर कैसे करोगे, मुझे तो बहुत फीलिंग आ रहा है, हमारे साथ क्यों उनकी ऐसे नहीं चिट चैट होती है, व्हाई कांट ही स्पीक नाइसली, वो ठीक से ढंग से बात क्यों नहीं करते, इतना गुस्सा क्यों करते हमसे. तो एक ने बोला इग्नोर कर लो, एक ने इतना दिल में ले ली बात, क्यों? और जिसने दिल में बात ले ली, जिसको अफेक्ट हुआ, वो क्या कहते हैं कि मुझे अफेक्ट हुआ क्योंकि आपने ऐसे कहा, आपने ऐसे किया. इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? एक्चुअली नो, मुझे अफेक्ट हुआ, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरे अपने संस्कार ऐसे हैं कि मैंने बात दिल में ले ली. कईयों को वो संस्कार नहीं है, वो लोग दूसरी रीति से मैनेज कर लेते हैं, वो कहते हैं इग्नोर कर लो, तो उनको इतना दिल में नहीं लगा. इसी प्रकार से इन द सेम वे लाइफ में कई बातें आती हैं, चेंजेस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है एक प्रकार से, फिर बीच में कोविड आ गया, बिजनेस ठप हो गया, इट मींस अनएक्सपेक्टेडली चेंजेस. तो क्या होता है अंदर, एक जने को लगता है ये तो जैसे इतनी मुसीबत आई लाइफ में, पता नहीं आगे मैनेज कैसे करेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे चलेगा. दूसरे किसी को लगता है अच्छा है, एक साल हमको थोड़ा आराम करने को मिलेगा, बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा पैसे का घाटा होगा, सो व्हाट. एक के माइंड में इतना चिंता, एक के मन में बिल्कुल आराम. क्यों? क्यों? और चिंता है क्या, बेआरामी है क्या? जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होते हैं, जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस पैदा होते हैं, वो कहां से आते हैं? वो परिस्थितियों से आते हैं, दूसरे व्यक्तियों से आते हैं, कि मेरे अंदर से आते हैं? सोचने की बात है ना। हमको कभी कभी लगता है कि इतनी जिम्मेवारियां हैं लाइफ में, इतने सारे डेडलाइंस हैं, इतने टारगेट्स हैं, इतने लोग संभालने पड़ते हैं, और कई लोग इतने इजीली कर लेते हैं, और कई लोग थोड़ी सी भी जिम्मेवारी में भी फ्लक्चुएट। सो एक्चुअली लाइफ और हमारी आध्यात्मिक पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई हमको यही सिखाती है कि अगर हम अपने को मैनेज करते हैं तो बाहर का कोई भी परिस्थिति होगा वो हमको हिला नहीं सकेगा। बाहर जितनी भी जिम्मेवारियां बढ़ेंगी उनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, पर वो तब जब मेरे अंदर जो अंदर चिंता का संस्कार है या बेआरामी का संस्कार है या क्रोध का संस्कार है वो खत्म हो जाए। तो जो भी रिएक्शन पैदा होता है वो मेरे अंदर है, जो बाहर परिस्थिति है या बाहर जो व्यक्ति है वो मुझे ट्रिगर करता है, उसके होने से मेरे को अंदर से जैसे रिएक्शन पैदा हो जाती है। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे गुस्सा करवाया। इंग्लिश में हम इजीली कहते हैं ना किसी को, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? है कोई आपकी जिंदगी में जो आपको, जिसके कारण से आपको गुस्सा होता है, नहीं गुस्सा चढ़ता है? नहीं है कोई? नहीं, कोई भी नहीं है? है? अच्छा, कोई तो ऑनेस्टी से कह रहे हैं हाँ है। कोई परिस्थितियां हैं जिसके कारण आपको चिंता होती है? है, बिल्कुल है ना। तो हम क्या कहते हैं, उस परिस्थिति के कारण मुझे चिंता हो रही है। एक्चुअली उस परिस्थिति ने क्या किया, परिस्थिति ने आपके अंदर जो बटन है ना चिंता का, उसको दबाया, और आपके अंदर आपके जो विचार चले, फीलिंग्स चली, वो सब चिंता से रिलेटेड। कोई दूसरा व्यक्ति होगा आपके उसी परिस्थिति में, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसके अंदर वो बटन है ही नहीं। इंग्लिश में ये सेइंग है ना, यू आर प्रेसिंग माई बटन्स, कहते हैं ना, आप मुझे गुस्सा करवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी एंग्री, राइट? बट ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से लाइफ जीना, एक्चुअली इसको कहते हैं आउटसाइड इन, आउटसाइड इन मैनेजमेंट। माना आपने, हमने जो अपना अंदर का रिमोट कंट्रोल है ना, अपनी फीलिंग्स का, अपने विचारों का, हमने वो रिमोट कंट्रोल बाहर की दुनिया में दे दिया, बाहर की दुनिया को दे दी। समझो आप टीवी देख रहे हो, आराम से बैठे हो, प्रोग्राम चल रहा है, रिमोट यहां पड़ा है, और कोई आ जाए कमरे में, रिमोट पकड़ के टीवी का चैनल बदल दे, आपको कैसे लगता है? रखो रिमोट को, ये तो मेरा टीवी स्क्रीन है, मेरा रिमोट है, आप क्या कर रहे हो बीच में, राइट? पर आपने रिमोट कंट्रोल उनको दे दिया तो फिर उन्होंने जो करना था कर लिया। अभी हम उसको अपने अंदर के ओर वही एग्जाम्पल लेके देखें। आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है, आप टाइम से सवेरे उठे हैं, मॉर्निंग बहुत अच्छा गया, आपने अपना योगा कर लिया, मेडिटेशन कर ली, प्राणायाम किया, नाश्ता खाया, बाहर निकले तो देखा किसी ने गाड़ी ठोक दी, क्या हुआ? उस सिचुएशन ने, उस परिस्थिति ने आपका बटन दबाया, पहले तो गुस्सा का बटन, फिर चिंता का बटन कि ओहो इंश्योरेंस है कि नहीं है गाड़ी का अभी वैलिड। तो ऐसा नहीं है कि द सिचुएशन मेड मी एंग्री, सिचुएशन ने मेरे अंदर का जो मन की स्थिति को छीन ली। मैंने अपनी मन का जो रिमोट है ना, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बिल्कुल ठीक थी, द मॉर्निंग वॉज फाइन, पर फिर रिमोट मैंने उस परिस्थिति को दे दी। उस परिस्थिति ने पहले तो अंदर विचार शुरू कर दिए, उन विचारों से फिर फीलिंग्स शुरू हो गए, और चिंता है क्या, वरी है क्या, एक फीलिंग है। जब कहते हैं मुझे चिंता है, तो चिंता एक बेआरामी की फीलिंग है। इसलिए अगर हमने चिंता मुक्त रहना है, अगर हमने लाइफ ईजिली जीना है, तो हमको ये सीखना होगा कि उस रिमोट को मैं अपने हाथ में कैसे रखूं, ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति ये रिमोट छीन ना ले। जब मैंने रिमोट किसी और के हाथ में दे दिए, लाइफ के हाथ में दे दी, तो फिर मेरी लाइफ एट रिस्क रही। कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी फीलिंग आ सकती है, कोई भी विचार आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं रहे। बाहर का सिचुएशन, कोई भी चैनल स्विच करें, कभी चिंता का चैनल, कभी गुस्सा का चैनल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी तनाव का चैनल, और फिर हमारे कंट्रोल में ना तो हमारा मन है, ना हमारे विचार है, ना हमारे फीलिंग्स। तो रहस्य ये है कि हम ऐसा टेक्निक सीखें जिससे वो रिमोट मेरे हाथ में रहे, और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो मेरे अंदर की स्थिति को डावाडोल, मतलब फ्लक्चुएट नहीं कराए। उसके लिए एक्चुअली बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, परंतु बहुत टाइम से हमने ऐसी आदत डाली है कि जो लाइफ में होता है उसके कारण मेरा रिएक्शन, फिर और रिएक्शन बाहर से आता है तो अगेन मेरा रिएक्शन, तो ये पिंग पोंग गेम चलता रहता है, और हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम, वो परिस्थिति के कारण से हुआ है, इस व्यक्ति के कारण से मेरे अंदर के फीलिंग्स बदल गए, और वो वही कहते हैं हमारे बारे में, इट्स बिकॉज ऑफ यू। सो अगर मुझे सब जिम्मेवारियों को मैनेज भी करना है, जो हम मेरे दिनचर्या में टास्क है, उनसे भी प्यार रखना है, आराम से करते रहना है, तो मुझे ऐसा टेक्निक अपने साथ में लेना पड़ेगा फॉर द होल डे, पूरे दिन में, जिससे किसी चीज का अफेक्ट ना हो। मतलब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उस प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन का टेक्निक सीखना पड़ेगा। तो अपने आप को अगर आपने चेंज करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि किस सिचुएशन से मुझे अफेक्ट होता है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आपको अफेक्ट होता है मुझे नहीं होगा, जिससे मुझे अफेक्ट होता आपको नहीं होगा। इसलिए पहला चीज है समझना कि क्या जब टाइम कम होता है उस टाइम पे यू नो लाइक डेडलाइन होता है ना ऑफिस में कि हाँ ये रिपोर्ट सबमिट करना है, या फिर घर पे बच्चों को तैयार करके स्कूल बस में बिठाना है और टाइम कम है, क्या टाइम की वजह से मेरे बटन्स प्रेस होते हैं? कई लोग क्या होते हैं कि अगर कोई डेडलाइन ना होना तो बहुत प्यार से रहते हैं, जब डेडलाइन सामने आता है कि हाँ इस टाइम पे पूरा करना है तो जिसे अंदर ना थोड़ा टेंशन थोड़ा तनाव शुरू होता है। ट्रू? तो क्या डेडलाइंस टाइम मेरा रिमोट कंट्रोल ले लेती है? क्या कोई व्यक्ति है मेरे लाइफ में जिसको मिलते, अरे मिलना छोड़ो उसके बारे में सोचते भी है ना तो ही अंदर चिंता शुरू हो जाती है, तनाव शुरू हो जाता है, कि या कोई परिस्थितियां होती है जिसमें आई लूज माय पावर, मेरा रिमोट कंट्रोल चला जाता है, मैं उस रिमोट कंट्रोल को हैंडओवर कर लेती हूं किसी और को। तो पहला चीज है पहचानना। तो आप एक मिनट सब थोड़ा सा सोच के नोट करना मन में कि मैं अपना रिमोट कंट्रोल किसको देती हूं या कौन से परिस्थितियों को देती हूं। मेरा रिएक्शन लाइफ में सबसे ज्यादा कब आता है सोच लो। When do I react the most? क्या मेरे बच्चों के साथ रिएक्शन होता है? ऑफिस में जाके सबसे ज्यादा रिएक्शन होता है? सबने सोच लिया? पहचाना थोड़ा सा अपने आप को कि मेरा रिएक्शन कब सबसे ज्यादा होता है? अच्छा, जो साथ में बैठे हैं ना उनको बताओ, शेयरिंग कर लो एक मिनट के लिए। कोई भी आपके साथ में बैठा हो शेयर कर लो एक दूसरे से कि आप किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वन मिनट आप शेयर करो एक दूसरे से कि आप किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हो। किसी को ढूंढ लो आगे पीछे के रोज में जो आपके साथ में हो और शेयर कीजिए। Everyone has shared? ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप है पहचानना, अपने आप को पहचानना। सेकंड स्टेप है कि अगर हम उस सिचुएशन में अपने अपना रिएक्शन बदलना चाहते हैं तो ये हुई बाहर की ट्रिगर, किसी ने बोल दिया कुछ, किसी ने कुछ किया। रिएक्शन होने से पहले हमको थोड़ा गैप देना है, पॉज बटन दबाना है। आप पॉज बटन को जानते हैं? सब जानते होंगे ना, फोन पे कभी कुछ या टैबलेट में या लैपटॉप में कुछ वीडियो चलता है तो पॉज बटन है ना, अंदर हमने वो पॉज बटन दबाना है। पॉज माना डोंट रिएक्ट, थोड़ा सा टाइम देना अपने आप को, क्योंकि अक्सर हमारे लाइफ में ये होता है कि एक चीज होता है इमीडिएटली रिएक्शन, सोचते नहीं है हम कि करें या ना करें। अगर कोई डिफरेंट रीति से अगर हमने अप्रोच किया, अगर हमने कुछ नया ट्राई किया, मे बी देयर कुड बी अ बेटर आउटकम। तो इसलिए पॉज बटन दबाना, थोड़ा रुक के सोचना, इज देयर अनदर वे, क्या कोई दूसरा रिस्पॉन्स हो सकता है सिचुएशन में। अगर हम ये कर सकते हैं, हमारी बुद्धि जो है अंदर, बुद्धि समझते हैं सब, इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि को चांस मिलता है थोड़ा सा बीच में दूसरा सजेशन देने के लिए कि अगर आपने वही चीज रिपीट किया तो आपको वही फीलिंग्स और वही रिटर्न मिलेगा। अगर आपने कुछ नया ट्राई किया, कुछ दूसरा रिस्पॉन्स किया, हो सकता है कि उसका रिटर्न थोड़ा डिफरेंट हो। इसलिए पॉज बटन दबाना बहुत जरूरी है। तो जब आप फील करते हैं कि मेरे अंदर कोई चिंता की बात हो रही है, चिंता की फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर थोड़ा सा तनाव का फीलिंग है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे क्या करना है? पॉज, यस, और थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, चाहे 30 सेकंड्स, चाहे 1 मिनट। और उस टाइम पे क्या करना है? नाउ स्टेप 3, आपने अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर लेके जाना है, मींस डिटैच होना है, न्यारा होना है। कैसे करते हैं ये? आप कभी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में गए हैं, है ना? आप जब ऊपर उड़ रहे होते हैं और नीचे देखते हो, तो नीचे अगर कोई भी चीज हो, एक बड़ा मकान हो, बिल्डिंग हो, तो वो कैसा लगता है? कुछ छोटा लगता है ना। वही मकान यहां से आप देखेंगे तो कितना बड़ा लगता है, पर जितना आप ऊपर उड़ेंगे वही चीज बहुत छोटी नजर आती है। क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन बदल गया। यहां आप जमीन में थे तो ऊपर देखते थे, तो चाहे मकान है चाहे पहाड़ है, पहाड़ बहुत बड़ा नजर आ रहा था। वही चीज अगर आपने अपना पोजीशन बदल दिया तो क्या हो जाएगा? बहुत छोटा दिखेगा, है ना? तो एक इतना बड़ा पहाड़ बिल्कुल राई जैसे दिख गया। तो जब आप पॉज बटन दबाएंगे उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपना पोजीशन बदल दें। यहां चलने से, इस धरती पे चलने से वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा नजर आएगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा न्यारा करेंगे, मैं उसको हेलीकॉप्टर व्यू बोलती हूं, थोड़ा अपने आप को उठाएंगे उस सिचुएशन से, तो एक तो सिचुएशन छोटा लगने लगेगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। दूसरी बात, जब आप ऊपर उड़ते हो ना एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन से ना बहुत क्लियर नजर आता है कि क्या चीज कहां है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा नतीजा निकालना है क्लैरिटी से, थोड़ा अपने आप को न्यारा करो और सोचो कि अक्सर मैं यही रिस्पॉन्स लेती थी, अक्सर मैं यही रिपीट करती थी, इस बारी व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली। अगर मैंने अपने रिएक्शन में, रिस्पॉन्स में कुछ दूसरा किया, कोई दूसरा संस्कार अपनाया, जहां पे चिंता का संस्कार था, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू वरी, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, अगर मैंने चिंता नहीं किया तो देखते हैं क्या होता है, एंड जस्ट सी, आपके मन में जो स्थिरता आएंगी, आपके मन में जो क्लैरिटी आएंगी, आपके मन में हल निकालने का, समाधान निकालने की शक्ति, समाधान निकालने के आइडियाज बिल्कुल अलग से आएंगे। इसमें आपका मन काबू में आएगा, क्योंकि जब भी हमको चिंता होती है हमारे मन में क्या होता है? इतने विचार पैदा होते हैं कि कुछ क्लियर नजर नहीं आता है। समाधान तो छोड़ो, क्या करना है, कैसे करना है, नथिंग। इसलिए पहली चीज है, हमने अपने मन को स्थिर रखना है। सो रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप क्या था? पहचानो, अपने आप को पहचानो, मेरे अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, मुझे किस चीज से थोड़ा डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा एट रिस्क मैं कहां होती हूं, चाहे वो अपना बच्चा ही ना हो, अपनी सास ससुर ना हो, चाहे ऑफिस में कोई व्यक्ति ना हो, चाहे अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी, पर समझना है कि कहां से मेरा ट्रिगर आता है, नेक्स्ट, जब भी थोड़ी फीलिंग आती हो कि हाँ वहां से मुझे अभी अफेक्ट हो रहा है, पॉज बटन, डोंट रिएक्ट, थोड़ा समय दो और अपना पोजीशन बदलो. सोचो, हाउ कैन आई बी डिफरेंट, मैं अपने आप को कैसे अलग रीति से मैनेज कर सकती हूँ, दूसरा रिस्पॉन्स दे सकती हूँ. मन हमारा जो है ना, वो अपने संस्कारों से बहुत संबंधित है, बहुत क्लोज है. जो मेरी प्रोग्रामिंग है अंदर लाइफ में, वो ही मेरे मन को मैनेज करता है. आपने अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी में जो भी देखा है, जो भी अनुभव किया है, जो भी आपने पैटर्न्स बार 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 चलाए हैं, चाहे जानते हुए चाहे सबकॉन्शियसली अनजान में, वो ही आपके मन को अभी चला रहे हैं. इसलिए अगर आपने बचपन से चिंता का संस्कार सीखा है, तो वो चिंता आपके अंदर चलेगी, वो आपको अफेक्ट करेंगी. चाहे आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही होगी, फिर भी आपके अंदर चिंता होगा. अभी तो सब कुछ ठीक है, कल को पता नहीं क्या होगा. राइट? कई लोग ऐसे भी होते हैं, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी चिंता लेके बैठे हैं. क्यों? कल को पता नहीं क्या हो. तो वो चिंता कहां से आई, वो विचार ही कहां से आया? इस समय को एंजॉय करने का संस्कार क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरे संस्कारों में चिंता बैठी हुई है. उसी प्रकार से कोई भी हमारे लाइफ में रिएक्शन होता है, वो हमारे संस्कारों में एक प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग समझते होंगे, कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग होती है ना, वो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है. तो अगर हमने उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, तो हमें इन तीन स्टेप्स को यूज करना होगा. हम सबके अंदर ये प्रोग्रामिंग आई कहां से? आपके बचपन में, चाहे आपकी फैमिली में. अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपके अंदर जो अभी प्रोग्रामिंग है, शायद आपके माँ बाप में होंगे, चाहे मदर फादर, चाहे परिवार में और किसी सदस्य से आपने पिकअप किया होगा. उनको देखते 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 आपने कॉपी किया होगा, चाहे स्कूल में अगर आपके टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, और हो सकता है कि आपने कोई असाइनमेंट नहीं किया हो, आपने एग्जाम ठीक से नहीं दिया हो, तो आपको थोड़ा सा उन्होंने डांटा होगा. तो अंदर कौन सा संस्कार शुरू हुआ, कौन सा प्रोग्रामिंग शुरू हो गया? चिंता का, कि अगर मैंने फिर से एग्जाम फेल किया तो मुझे फिर डांट पड़ेगी. तो ये करते 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 हमारे अंदर प्रोग्राम्स बैठ गए हैं, और ये ना अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस में चलते रहते हैं. इसलिए आप जो आज हो, वो आपके पूरे लाइफ का प्रोग्राम का रिजल्ट. यू आर अ रिजल्ट ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग इन योर लाइफ. हमारी पर्सनैलिटी में अलग अलग संस्कार होते हैं ना, तो एक एक संस्कार, एक एक प्रोग्राम हमने लाइफ में अपनाया है. अगर हमने उसको बदलना होगा, तो थोड़ा अटेंशन से अपने आप को पहचान के उसको चेंज कर सकते हैं. चिंता एक ही प्रोग्राम है, उनमें से एक ही प्रोग्राम है. तो जब भी बाहर की परिस्थिति में कोई भी उसको थोड़ा सा ट्रिगर करेंगे, थोड़ा बटन दबाएंगे, तो वो प्रोग्राम चलने लगता है ऑटोमेटिकली. लोग आजकल एआई की बात करते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? वो बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम है जो चलता रहता है और वो एनालाइज करता रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर, इसको आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, इसको नेचुरल आत्मिक इंटेलिजेंस कहेंगे, जो अंदर एनालाइज करता रहता है कि इस सिचुएशन मुझे कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, कौन सा संस्कार यूज करना है, विच मीन्स कौन सा रिएक्शन बेस्ट रहेगा। सो इफ वी वॉन्ट टू चेंज, अगर हम बदलना चाहते हैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको बहुत क्लोजली अपने आप पे अटेंशन रखना पड़ेगा। और जब भी थोड़ी सी भी चिंता, थोड़ा सा भी अंदर बेआरामी शुरू होती है, इमीडिएटली उसको पहचान के, पॉज करके, थोड़ा सा सिचुएशन से अलग होके, जैसे हेलीकॉप्टर व्यू लेके, फिर सोचना पड़ेगा कि मैं अपना रिस्पॉन्स को कैसे बदल कर उस सिचुएशन को मैनेज कर सकती हूँ। तो माय फेवरेट वे, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लाइफ में देखती हूँ कि जब भी मेरे अंदर कोई प्रोग्राम होता है जो मुझे ठीक नहीं लगता है, चिंता भी एक है, तो मैं देखती हूँ मेरे लाइफ में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल बेफिक्र है, इसी सिचुएशन में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, और मैं उनसे पूछती हूँ कि हाउ डू यू नॉट रिएक्ट, आपके अंदर कैसे हो सकता है कि कोई रिएक्शन पैदा ही ना हो, और आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हो। और मोस्टली आपको दिखाई देगा, आपको सीखने को मिलेगा कि जो बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं ना लाइफ में, वो उनमें एक बहुत यूनिक, बहुत अंदर से बहुत स्वीट निश्चय होता है कि एवरीथिंग विल बी ओके। और हमारे अंदर कई सिचुएशंस में ये संस्कार, ये वॉइस, ये अंदर से आवाज आती है कि डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, पर दूसरे सिचुएशन में वो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो हमने क्या करना है, हमने चिंता का जो प्रोग्रामिंग है उसको बदल के निश्चय के प्रोग्राम में चेंज कराना है। कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। थोड़े साल पहले, 10-15 साल पहले मुझे याद है, मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के अबू धाबी गई, बिग कल्चर चेंज, कल्चर शॉक जिसको कहते हैं। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत ओपन कंट्री, जहाँ पे हम मेडिटेशन की बातें बहुत ओपनली करते हैं, और कहाँ मिडिल ईस्ट में, जहाँ 15 साल पहले बिल्कुल मेडिटेशन का नाम निशान नहीं, किसी को मालूम ही नहीं था कि मेडिटेशन होता क्या है। आजकल तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, दुबई में, अबू धाबी में, अभी तो सऊदी अरेबिया में भी योगा क्लासेस चलते हैं, मेडिटेशन बहुत खुलेआम से चलता है, पर उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि वहां जाके मैं करूंगी क्या, कहाँ से शुरू करेंगे। तो मेरे अंदर एक तरह से जैसे चिंता, और ऊपर से मेरे सीनियर्स ने भी बहुत ब्लेसिंग्स, वरदान दिए थे कि आप जाओगे वहां, सेवा करोगे, सेंटर खुलेगा, सब ठीक हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ये कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आता था। पर जो वरदान थे मेरे ऊपर, उनसे मेरे अंदर एक प्रोग्राम था कि उन वरदानों से अगर मैं अपने आप को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखूं, अपने मन को बिल्कुल शांत रखूं, तो कोई ना कोई समाधान नजर आ जाएगा। तो उस टाइम पे मैं यही याद करती रहती थी कि जो हमारी दादियां हैं जिन्होंने अपने वरदान दिए कि आप जाओ, क्या वो मेरे से बेटर जानते हैं कि मैं बेटर जानती हूं, कौन है, हु नोज बेटर। ऑब्वियसली उनको मालूम है कि वो मुझे भेज रहे हैं, तो किसी कारण से भेज रहे होंगे। तो मेरे अंदर जो निश्चय बैठा हुआ था वो निश्चय का प्रोग्राम चलने लगा, और उस निश्चय से, उस फेथ से सब कुछ हुआ। जैसे मेरे अंदर थोड़ा सा भी एंग्जायटी, तनाव, चिंता शुरू होता था तो मैं क्या करती थी, पॉज बटन, और फिर किसने आपको यहां भेजा है, उन्होंने किस भाव से भेजा, क्या वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से अभी मैं अपने आप को ये याद कराती हूं कि चाहे मुझे कभी कभी लगता है कि ये मैं जिंदगी अकेली जी रही हूं, पर नहीं, मेरा मालिक कौन, मेरा रचयिता कौन, मुझे चलाने वाला कौन है। अगर मैं अपनी जिंदगी को उस परमात्मा को अर्पण करूं, अगर मैं उसको इन्वॉल्व रखूं अपने लाइफ में, तो जो चिंता की प्रोग्रामिंग है ना, उसको चेंज करना बहुत इजी हो जाता है। निश्चय, फेथ, ट्रस्ट, परमात्मा में, अपने में और अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ के हर एक सीन में ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी लाइफ देखें मोड़ के, पास्ट में अगर आप देखेंगे तो हर एक मोड़ में, स्पेशली जो डिफिकल्ट सिचुएशंस रहे होंगे, उसमें आपने सबसे ज्यादा सीखा होगा। इज दैट राइट? जब लाइफ इजिली चलता है तो आप क्या सीखते हो? नॉट मच। जब परिस्थितियां आती है, जब डिफिकल्टीज आती है, तभी हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, राइट? अभी अपग्रेड करने के दो तरीके हैं, या तो आप चिंता करो क्या होगा, कैसे होगा, उसी प्रोग्रामिंग में जाओ, तब तो अपग्रेड होने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। अपग्रेड आखिर होंगे, बिकॉज उस सिचुएशन को पार तो करना है, बट इजी नहीं होगा, और आपके मन में वो चिंता चलती रहेगी, चिंता का संस्कार प्रोग्रामिंग और ही अंदर डीप हो जाएगा। दूसरा तरीका है अपग्रेड करने का, कोई डिफिकल्टी आती है, फर्स्ट क्वेश्चन, इस परिस्थिति में या इस व्यक्ति से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, और अगर हम इस मोड में जाएंगे, इस पॉजिटिव अप्रोच से लाइफ को देखेंगे, तो इट्स मच मच इजियर टू चेंज प्रोग्रामिंग। अपने अंदर जो डीप चिंता का या बेआरामी का संस्कार है, प्रोग्रामिंग है, वो इजिली छूट जाता है। इसलिए रिमेंबर द 3 स्टेप्स, पहचानो अपने आप को, पॉज बटन दबाओ, अपना पोजीशन बदलो, पी पी पी, पहचानो, पॉज, पोजीशन बदलो। ओके, सो मैं थोड़ा सा यहां ब्रेक लेके, आई वांट टू ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स, तो प्रश्न उत्तर का थोड़ा सा टाइम रखना है, जस्ट 10-15 मिनट्स। अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप माइक लेके पूछ सकते हो। आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस, प्रश्न तो होंगे। क्या आप मुक्त हो गए चिंता से? आइए।
ओम शांति दीदी। My question is related to a person. A person who creates a trigger, and I can't ignore that person because the person is my mother-in-law. She carries an illness which makes her very angry, and her expectations are a lot. All efforts have been done to keep her calm, I've been married for 27 years. I've gone through many situations in life. The more I make effort to keep her calm, the more the response triggers anger in me to a situation where I don't want to see her face.
Mm-hmm.
And I have to see her face. She's my mother-in-law.
आप ने सब प्रश्न समझ लिए? सबने समझा? ये सास की बात चल रही है. So actually आपने एक बहुत अच्छी बात कही. She is not well. वो बीमार है. जब कोई बीमार होता है, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, किसी के पैर में प्रॉब्लम है और वो चल नहीं पाता है और आप देखते हो कि वो गिर रहा है, तो आप क्या करते हो? आप हेल्प करेंगे ना उनको? अगर रास्ते में आप किसी को देखते हो, कोई बुजुर्ग हो, उनसे बैग्स उठाए नहीं जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं एज के हिसाब से, तो आप क्या करोगे? हमारी भारतीय संस्कृति में हम मदद करते हैं ना, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो फिजिकली हम देख पा रहे हैं कि उसको तकलीफ है. अभी अंदर की तकलीफ को समझना, इट्स नॉट सो इजी. कोई भी आत्मा अगर है तो उसकी लाइफ की सफर जो रही है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है. कोई भी हो, मैं आपको देखती हूँ, आप मुझे देखते हो, मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा, आपने क्या देखा, हम एक दूसरे के लाइफ को जान नहीं पाते हैं. किसके प्रोग्रामिंग्स कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, हम नहीं जान पाते हैं. इतना देख सकते हैं कि हाँ, इस आत्मा में कुछ प्रॉब्लम है, इनकी रिएक्शंस, इनकी वे ऑफ बिहेविंग ठीक नहीं है. तो अगर वो आत्मा बीमार है, पर अंदर से बीमार है, आप क्या करेंगे? क्या करोगे? नॉट सो ईजी ना. बाहर हेल्प करना ईजी होता है, राइट? बैग्स उठा लो और हेल्प करो. अंदर जब हम देखते हैं कि कोई ठीक नहीं है, तो हम अपने को एडजस्ट करके प्यार से उनको संभालते हैं. क्यों? क्योंकि उस आत्मा के अंदर जो संस्कार अभी है, प्रोग्रामिंग जो है, वो ठीक नहीं है. उम्र के हिसाब से संस्कारों को चेंज करना ईजी नहीं होता है. जब हम यंग होते हैं ना, तो चेंज आर सेल्व्स इज क्वाइट ईजी. पर जैसे हम बड़े होते हैं लाइफ में, वो जो पैटर्न्स है वो डीप हो जाते हैं, डीपर डीपर डीपर. तो इसलिए जैसे जैसे जेनरेशन्स पास होते हैं, उनको चेंज करना तो ऑलमोस्ट असंभव है. सो व्हाट टू डू? टू ऑप्शंस. एक ऑप्शन है, she is not going to change. तो मेरे अंदर जो बेआरामी है वो पड़ी रहे, let it be like that. That's one option. दूसरा option है, पहचान तो लिया भाई साहब ने कि हाँ, this is the problem. Pause button. Change your position. जो आपका view point है वो थोड़ा सा बदल दो. वो मेरी सांस नहीं है. इमेजिन करो कि ये आत्मा, यू नो, शी इज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी. इस आत्मा ने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं. समझो मैं अगर आपको किसी की कहानी बताऊं कि ओह, यू नो दिस पर्सन, उन्होंने ये अपने लाइफ में देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, बिचारी आत्मा, यू नो, नाउ शी इज रियली स्ट्रगलिंग, उनको बहुत लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? Oh, I feel so sorry. Right? Right? कि नहीं? कि सांस याद आएगी कि नो बाकियों के लिए ठीक है बट नॉट फॉर माय मदर इन लॉ. तो जब आप पोजीशन अपना चेंज करते हैं और आप उस सिचुएशन को दूसरी नजर से देखते हो तो आपका रिस्पांस चेंज हो जाएगा. पर उसके लिए मुझे उस आत्मा को उस रिलेशनशिप में नहीं देखना होगा. ये एक आत्मा है अपनी जर्नी में है और मुझे नहीं मालूम है वो क्यों ऐसे है, उनके रिस्पॉन्सेज ऐसे क्यों है, उनकी बिहेवियर ऐसे क्यों है. ऑल आई कैन डू इज एक्सेप्ट, उनको एक्सेप्ट करके थोड़ा सा अपने को मोल्ड करके सिचुएशन में शांति ला सकते हैं और कुछ नहीं. उनको तो हम बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है. एक ही चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदल सकते हो, वो क्या है, वो कौन है? मैं. और मेरे अंदर क्या चीज बदल सकती हूं? प्रोग्रामिंग, संस्कार. सो चेंज कर, जब पोजिशन चेंज करते हैं एंड वी सी फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, दूसरी नजरिया से देखेंगे तो हमको थोड़ा सा अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ डिफरेंट समाधान सॉल्यूशंस आएंगे. हाउ कैन आई बिहेव डिफरेंटली, मैं कौन सा डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकती हूँ इस सिचुएशन में. यू नो टिंटेड ग्लासेस होते हैं ना, लाल ग्लासेस, ग्रीन ग्लासेस, राइट? जो ग्लासेस आप पहनोगे आपको सब कुछ वैसे ही नजर आता है ना. अगर मैं आपको कहूं आप अंडरस्टैंडिंग की ग्लासेस पहनो, जिस भी चीज को आप देखो, जौन सभी व्यक्ति सामने आए उसको समझ के ग्लासेस से देखो, समझ की ऐनक पहन लो, अंडरस्टैंडिंग की ग्लासेस, तो आपको सब कुछ डिफरेंट नजर आएगा. पर बात यह है कि उस मोमेंट में जब अंदर ट्रिगर होता है, उस मोमेंट में वो समझ के ऐनक पहन के पॉज बटन प्रेस करके अपना पोजीशन चेंज करना, उसके लिए अभी चौथा पी, पहचानना, पॉज करना, अपना पोजीशन चेंज करना, और चौथा प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए. जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा पुराना संस्कार थोड़ा सा वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा और वो नए संस्कार में बदल जाएगा. इसलिए जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा भाई साहब ने, आप यहां छोड़ने से पहले एक दो बारी अपने मन में ये दोहराना कि उसी आत्मा ने वही रिएक्शन किया, मैं कैसे पॉज बटन दबा के अपना पोजीशन चेंज करूं, अपनी नजरिया चेंज करूं कि ये आत्मा है मेरी मदर इन लॉ नहीं, और वो आज जो है वो अपनी लाइफ के हिसाब से उन्होंने जो देखा है, जो एक्सपीरियंसेस पाए होंगे उस हिसाब से वो ऐसे बनी है, तो मैं थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंडिंग से समझ से आगे मैनेज करूं. इज दैट ओके? गुड, थैंक यू.
ओम शांति दीदी. मेरे को एक प्रॉब्लम क्या है, मुझे मालूम है 10 दिन बाद मेरे को ये कुछ काम करना है या किधर जाना है, तो 10 दिन मैं उसके बारे में ज्यादा सोचता ही रहता हूँ. आई गिव यू वन एग्जांपल. मैंने गाड़ी लिया और जा रहा हूँ स्टेशन, सारा टाइम सोचता हूँ पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये टेंशन मेरा जाता ही नहीं है. एंड सेकेंडली आई एम इम्पेशेंट, तो थोड़ा सब फास्ट चाहिए भाई, एवरीथिंग फास्ट. तो उसके बारे में जरा आप.
ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, पार्किंग मिलेगा कि नहीं. तो ये भी एक संस्कार है ना, संस्कार ही कहेंगे, हैबिट ही कहेंगे ना, आदत ही है, राइट? तो हमने क्या करना है, बहुत इजी है, हमने सिर्फ आदत को बदलना है. आदत बदलना मुश्किल नहीं है अगर आप बदलना चाहो. ऑब्वियसली आप आए हैं, आपने प्रश्न पूछा, तो आपको तो ये आदत बदलना है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल रीति से सोचती हूँ दिन में, कहते हैं कि पीस में शांति में अगर मन चलता है तो एक दिन में हम कितने थॉट्स होते हैं, कितने विचार होते हैं, 40,000 थॉट्स पर डे, ये एवरेज होता है फॉर अ पीसफुल पर्सन। जब थोड़ा सा तनाव आने लगता है अंदर तो ये 40,000 से 60,000 तक जाते हैं। जब थोड़ा ज्यादा टेंशन आता है मन में, चिंता, तो ये 80,000 100,000 थॉट्स पर डे। उससे क्या होता है, जब मन ऐसे चलने लगता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसका इफेक्ट मेरे बॉडी में जाता है और वही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थोड़ा सा अंदर तनाव का जो फीलिंग है वो मेरे संबंधियों तक भी पहुंचता है, तो लोग फील भी करते हैं। कोई अगर गुस्से में है या टेंस है तो कोई जाता है उनके पास नहीं ना, सब एक दूसरे को कहते हैं दूर रहो दूर रहो, आज मूड ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर मैंने अपने आप को भी ठीक रखना है, संबंधियों को भी ठीक रखना है, अपनी बॉडी की हेल्थ को भी ठीक रखना है, तो ये जो चिंता तनाव का संस्कार उसको बदलना है। अच्छा कैसे बदलें, ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट टाइम जब यही प्रश्न आता है मन में कि पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, अब अपने मन को बोल दो मिले ना मिले, हु केयर्स। कभी पहले लाइफ में हुआ है कि पार्किंग कभी ना मिले? नहीं हुआ है। तो आपका एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि पार्किंग मिलेगी, शायद 5 मिनट घूमना पड़े, शायद 15 मिनट घूमना पड़े अराउंड एंड राउंड, मुझे मालूम है मुझे भी करना पड़ता, पर आखिर तो मिल ही जाएगी ना। अच्छा गाड़ी पार्क करके थोड़ा वेट भी कर लिया तो क्या हुआ, आप पीपीपी प्रैक्टिस करो, पहचानो पॉज पोजिशन, यहां जो आपने टाइम बिताया जो सीखा वो प्रैक्टिस कर लो। लोग कहते हैं अरे रेड लाइट ना आए हम जल्दी से जल्दी निकले, मैं कहती हूँ रेड लाइट को आने दो, क्यों, थोड़ा बैठने को मिलता है, थोड़ा स्टॉप करने को मिलता है, थोड़ा मन को शांत 2-4 मिनट शांत रखने को मिलता है। सो आपको तो उल्टा सोचना चाहिए कि पार्किंग ना मिले, आई गेट अ फ्यू एक्स्ट्रा मोमेंट्स टू बी पीसफुल, टू स्लो डाउन, यू सी। तो हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव। पहला पर्सपेक्टिव था कि पार्किंग नहीं मिलती है आई फील स्ट्रेस्ड, है ना, पार्किंग नहीं मिलती है तो अंदर चिंता शुरू होती है, तनाव की फीलिंग्स आ जाते हैं। अभी पार्किंग ना मिले तो कोई बात नहीं, 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नो प्रॉब्लम, मुझे अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिताने को मिलेगा, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस, थोड़ा अपने आप से बात करना, और कहीं जाने के लिए लेट भी हो रहे हो नो प्रॉब्लम, पहले आप कभी लेट हुए होंगे, कोई मिस भी नहीं करता। जस्ट लास्ट वीक मुझे किसी ऑफिस में जाना था मेडिटेशन सिखाने के लिए, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गए, तो क्या करें, अभी वहां पहुंचे तो पार्किंग भी नहीं मिली, थोड़ा टाइम लगा, तो जब तक मैं ऑफिस में गई तो इट वॉज 15 मिनट्स लेट, विच वॉज इट्स नॉट गुड, है ना, वो वेट कर रहे थे, मैंने तो यही सोचा वो वेट कर रहे होंगे। जब मैं पहुंची तो उस लेडी मेरी वेट तो कर रही थी पर उसने कहा आई एम सो सॉरी आपको पार्किंग नहीं मिली क्या? मैंने कहा नहीं, पार्किंग मिलने में भी टाइम लगा और मैं भी लेट हो गई ट्रैफिक की वजह से। कहती एक्चुअली हुआ क्या है कि आर प्रीवियस मीटिंग वो थोड़ा लंबा चला तो हम रेडी भी नहीं है, तो चिंता की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए अगर मैंने वो संस्कार बदलना है ना, जस्ट चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, that whenever there is no parking, whenever something takes longer, it's okay, I have some more time for myself, bas. To jaise jaise aap apna position, apna nazariya, your way of seeing it, you change it, apne aap hi wo tanav chala jayega. It's just a viewpoint, that's all. So Okay, two more questions yourself and yeah.
Om Shanti.
Om Shanti.
Sister, first I want to thank you for the wonderful session. I didn't doze off even for a second, even though I have a terrible sleep deficit. It was very engrossing. My question is that मुझे आपका वो PPP formula बहुत अच्छा लगा and to some extent I was aware of how to go about it and I can analyze क्या situation है जो trigger करता है. It's just that the days जब meditation अच्छे से होता है, everything is going fine or I am in control of my mind etc. Then let's say for example if one of my triggers is my work manager, then I can, even if the person reacts otherwise, I'm able to handle it in a different way. There are days but when वो auto trigger आ जाता है एंड वी डोंट वो फ्लो में चले जाते हैं लाइक नॉर्मली होता है एंड सो व्हाट माय क्वेश्चन इज दैट ये जो हम फ्लो में चले जाते हैं हाउ टू स्टॉप गोइंग इन दैट ऑटो मोड
ऑटो पायलट
हाँ ऑटो पायलट मोड
जो पुराना प्रोग्रामिंग है उसके ऑटो पायलट
हाँ बिकॉज वी देन मिरर द अदर पर्सन सामने वाला पर्सन ऐसे बिहेव किया देन माई रिएक्शन इज ऑल्सो लाइक दैट
जी तो कई दिन ऐसे होते हैं कभी नींद की कमी होती है कभी मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए टाइम ना मिलता है तो उस डे में आई गिव यू वेरी सिंपल सॉल्यूशन अंदर के जो ब्रेक्स है ना ब्रेक को दबाओ जानबूझ के अपने मन का जो ब्रेक है उसको दबाए रखो आप जब डाउनहिल ड्राइव करते हैं ना जो भी गाड़ी चलाते हैं वो समझेंगे यू हैव टू कीप योर फुट ऑन द ब्रेक राइट कि गाड़ी बहुत फिसल ना जाए तो ऑन डिफिकल्ट डेज ये करना है अपने को पहचानना है कि आज टुडे आई एम अ लिटिल बिट रिएक्टिव किसी भी कारण से तो कीप योर फुट ऑन योर माइंड्स ब्रेक हमेशा उस दिन को थोड़ा एक्स्ट्रा दबा के रखना है विजुअलाइज भी करना है कि आई हैव माय फुट ऑन माय माइंड्स ब्रेक क्योंकि अपने को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए अटेंशन जब नींद की कमी होती है थोड़ा मेडिटेशन कम हो जाता है तो वो अटेंशन चला जाता है अटेंशन थोड़ा लेस हो जाता है जब मॉर्निंग का मेडिटेशन अच्छा होता है वो शांति का फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है मॉर्निंग में सवेरे तो उससे नेचुरली वो अटेंशन बना रहता है नेचुरली वो शांति के संस्कार को पावर मिलती है शक्ति मिलती है अभी वो नहीं हुआ तो हमने उसको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा अटेंशन दे के स्पेशली कीप योर फुट ऑन द ब्रेक ओके गुड
Good evening, sister. Achha, this is a personal question. Like, we are in a joint family, and like they are very good to me. But when two people come in front, there's a spark. So that triggers. So how should we end it? Like that disturbs the atmosphere of the house.
Hmm.
So how is it that we can do anything in that or that is my question. But they all are very good to me. But when, means you can't just say na unka karma hai, because it is disturbing the atmosphere.
Ji.
So how can we handle this situation?
Ji, very nice. So aapne sabne prashna suna? Yeah, good, okay. तो आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया एटमोस्फियर अभी ये एटमोस्फियर शब्द कहां से आया ग्रीक में ग्रीक लैंग्वेज में एटमोस का मतलब है आत्मा जिसको हम आत्मा बोलते हैं सोल बोलते हैं रूह बोलते हैं ग्रीक शब्द ग्रीक लैंग्वेज में उसको एटमोस बोलते हैं एटमोस्फियर मीन्स आत्मा के आसपास में जो वायुमंडल बनता है उसको हम एटमोस्फियर कहते हैं अभी जब दो लोग थोड़ा गुस्से में है कॉन्फ्लिक्ट में है थोड़ा लड़ाई चल रहा होता है घर पे तो एटमोस्फियर बदल जाता है माना दोनों आत्माओं की जो एनर्जी है वो थोड़ी नेगेटिव बन जाती है तो उस कमरे की उस घर में पूरा माहौल बदल जाता है राइट तो हमारी आत्मा उस टाइम पे क्या कर रही है? एम आई गेटिंग इन्वॉल्व्ड? क्या मेरी आत्मा का के आसपास जो एटमोस्फियर है वो भी थोड़ी डाउन हो गई? कि मैंने अपनी आत्मा द्वारा शांति फैलाना शुरू किया जिससे मैं उस एटमोस्फियर को न्यूट्रलाइज करूं? दिस इज द चैलेंज. यस, यू ऑलरेडी नॉडिंग, समझ में आ गया. तो इन एनी सिचुएशन, अगर हम इन्वॉल्व नहीं भी है, हम उस सिचुएशन को अफेक्ट कर सकते हैं अगर हम अपने आप को बिल्कुल शांत रखें और हमारी जो वाइब्रेशंस है, हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल शांत, शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं. क्यों? एक तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी स्थिति को इतनी ऊंच रखेंगे कि उनकी एनर्जी हमको अफेक्ट नहीं करती है, नंबर वन. दूसरी बात है, शांति के वाइब्रेशंस से उन आत्माओं पर असर पड़ेगा जरूर. तीसरी बात, जब वो आपको देखेंगे शांति में बैठे हुए तो अपने आप ही थोड़ा शांत हो जाएंगे. और अगर आप थोड़ा लाइटली स्माइल भी करो, प्यार के वाइब्रेशंस भेज दो, तो और ही जल्दी शांत हो जाएंगे. जितना हम उस एटमॉस्फेयर में, उस सिचुएशन में बोलेंगे, और ही सिचुएशन खराब हो जाता है. इसलिए बोलना है तो एटमॉस्फेयर के थ्रू स्पीक करना है. ओके, लास्ट. ठीक है भाई, एक और प्रश्न.
ओम शांति. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन. सपोज इफ आई हैव हायर्ड अ प्रोफेशनल टू डू सम वर्क, ओके, पेइंग अ हैवी प्राइस फॉर इट, एंड स्टिल द वर्क इज नॉट डिलीवर्ड वेल. आई मीन यू नो, कुछ खामियां हो गई, कुछ हो गई, विच इज अनरिपेरेबल ऑल्सो. सो हाउ एम आई सपोज टू, आई कांट गिव पॉज एंड ऑल, थोड़ा तो एंगर आ जाएगा ना, बिकॉज हायरिंग समबडी एंड देन यू नो स्टिल.
वेरी गुड क्वेश्चन. यस, एक होता है घर की बातें, घर के जो रिलेशनशिप्स, और एक होते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपने किसी को हायर किया पेंटिंग के लिए, घर के काम के लिए, तो उस केस में क्या करना है अगर द अदर पर्सन इज नॉट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशंस? सो देयर आर टू थिंग्स. एक होता है गुस्से में आना, टेंशन फील करना, तनाव में आना. दूसरा होता है थोड़ा सा फर्मली कुछ बोलना. So, दो हफ्ते पहले की बात है, मैं बैंक में गई. तो मैंने बैंक मैनेजर से, पहले तो मैंने जाके बैंक में कहा कि आई वॉन्ट टू नो माई बैंक बैलेंस. तो उन्होंने कहा आपका तो यहाँ अकाउंट ही नहीं है. मैं कहा एक्सक्यूज मी, अकाउंट तो है. अच्छा, ये तो बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है तो आपको पर्सनली नहीं हम बता सकते. तो मैंने कहा बट आई एम वन ऑफ द यू नो सिग्नेटरीज ऑन द अकाउंट, थैंक यू. सो नहीं, आप प्रूफ दो. सो स्ट्रेंज, मैं तो हर महीने जाती हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आज ये क्या हो गया? पर मुझे, मैंने गुस्सा नहीं किया ना, मैंने जोर से बोला, मैंने प्यार से देख के कहा वेयर इज द बैंक मैनेजर, आई वॉन्ट टू मीट द बैंक मैनेजर इमीजिएटली. ओ, सो इन द सेम वे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर आपने पूरा काम नहीं किया, पेमेंट विद होल्ड होगा. आपने पूरा काम नहीं किया है तो कॉन्सिक्वेंस ये होगा. इन द सेम वे हमारे जो वर्क सिचुएशंस में हम कहते हैं कि हैव नो एक्सपेक्टेशंस, परंतु अग्रीमेंट्स तो होते हैं ना, अग्रीमेंट्स तो होते हैं. आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये डिपार्टमेंट ये डिलीवर करेंगे तो दूसरा डिपार्टमेंट आगे उस काम को बढ़ा सकते हैं. तो हमने उस अग्रीमेंट को लेके कॉन्सिक्वेंसेस, हिंदी में हम कहते हैं आपको आपका यू विल गेट योर कर्मा, बट नो, रियल लाइफ में कहते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. और वही रूल बच्चों पर भी, अगर आपने खाना पूरा नहीं खाया, भोजन नहीं खाया, तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा, बाहर जाने को नहीं मिलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस. तो पहले से आपको कॉन्सिक्वेंस सेट करने हैं और उन पे फर्म रहना है. और कभी कभी सीखने को भी मिलता है कि आई शुड हैव विद हेल्प सम पेमेंट, यू नो कभी कभी हम पूरा पैसा दे देते हैं विद ट्रस्ट के अच्छा वो कर लेंगे, पर हमको फिर सीखने को मिलता है कि नेक्स्ट टाइम नो, वी हैव टू बी सेंसिबल. ओके
गुड. बहन जी, सभी भाई बहनों के लिए एक जानकारी आपसे चाहते हैं. जैसे अभी आप मुस्लिम कंट्रीज में सेवाएं करते हो धर्म की आत्माओं की, तो उन धर्म की आत्माओं को कैसे आप बाबा का ज्ञान समझाते हो, कैसे उन्हें कन्विंस करते हो, तो ताकि सभी भाई बहने भी उस धर्म की आत्माओं की सेवा कर सके जो उनके आसपास में रहती है. तो इसके विषय में थोड़ा सा यदि आप शॉर्ट में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू.
तो मुझे अभी 15 साल हो गए अबू धाबी में, और वहां पे हम एक मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं. वो ब्रह्मा कुमारीज का नाम नहीं देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इनर स्पेस सेंटर के नाम से चलाते हैं मेडिटेशन सेंटर. तो ब्रह्मा कुमारीज का लंदन में इनर स्पेस सेंटर के नाम से 3-4 शॉप्स हैं, तो हमने वो नाम अपनाया है. तो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश बैकग्राउंड, बुद्धिस्ट, एक्चुअली ये जो ज्ञान हम सिखाते हैं, अपने को पहचानना, परमात्मा उस एक लाइट को पहचानना, मन को उससे जोड़ना, शक्ति लेना और अपनी अंदर की प्रोग्रामिंग को चेंज करना, ये तो बहुत ही बेसिक सिंपल नॉलेज है. सिर्फ शब्दों को थोड़ा सा चेंज करके हम किसी को भी ये ज्ञान दे सकते हैं. ट्रू और नॉट? क्योंकि सब जानते हैं, सब मानते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर में एक लिविंग एनर्जी, चाहे आप उसको आत्मा कह लो, सोल कह लो, रूह कह लो, एटमोस कह लो, कुछ भी कह लो, है तो हम अंदर थिंकिंग, फीलिंग, सोचने वाली, महसूस करने वाली एनर्जी, आत्मा वो ही हुई, राइट? ये तो सब जानते हैं, हर धर्म मानता है. अच्छा, ऊपर वाला परमात्मा, उसको भी हर धर्म लाइट, नूर, ज्योति एक ही शब्द से जानती है, लाइट, नूर, ज्योत, ऑल द सेम. चाहे हम शिव बोले, अल्लाह, गॉड, जेहोवा, ये तो नेम्स अलग है, पर कॉन्सेप्ट वही है. मन को उससे कनेक्ट करके शक्ति लेना और उस शक्ति से अपने आप को बदलना, ये भी कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसमें भी किसी को कोई तकलीफ नहीं. और कौन है इस दुनिया में जो अपने संस्कारों को नहीं बदलना चाहता? कोई है जो बोले आई एम परफेक्ट? नहीं ना. आप जहां जाए, जहां भी जाएंगे, चाहे मुस्लिम देश, क्रिश्चियन देश, कहीं भी, बुद्धिस्ट देश, आपको हर शहर में, गली गली में सब कहेंगे कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, आई वॉन्ट टू बी मोर पीसफुल. जब कोई कहता है मुझे शांति चाहिए लाइफ में, तो एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं? मुझे अपना अंदर का जो शांति का प्रोग्रामिंग है ना, उसमें और शक्ति डालनी है, उसको यूज करना है. उसको यूज करना हम भूल गए हैं, इसलिए नफरत, घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या, ये जो प्रोग्रामिंग्स है हमारे अंदर चल रही है, क्योंकि हमने उनको एनर्जी दी है. इसलिए मुस्लिम देश में सेवाएं देना इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ अपनी भाषा को थोड़ा चेंज करके, उनकी लाइफ को समझ के, उनकी ट्रिगर्स क्या है, उनको क्या डिफिकल्ट लगता है. और मैं आपको सच बताऊं, उनके प्रॉब्लम्स भी वही है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बच्चे, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट भाई जी.